पांचवां अध्याय इंडोनेशिया के क्षेत्र में भारतीय सभ्यता और संस्कृति। पहला, साहित्य। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों तथा प्रदेशों में जो अनेक भारतीय राज प्राचीन समय में विद्यमान थे, उनका संक्षिप्त परिचय पिछले अध्यायों में दिया गया है। इन भारतीय राज्यों के धर्म, सामाजिक जीवन, शासन पद्धति, कला, आर्थिक दशा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रधान साधन निम्नलिखित हैं। पहला, जावा का प्राचीन साहित्य। दूसरा, विविध अभिलेख जो प्रस्तर खंडों एवं ताम्र पत्रों आदि पर उत्कीर्ण है। तीसरा, पुराने मंदिर, चैत्य स्तूप आदि और उनके भग्नावशेष। और चौथा, विदेशी विवरण व ग्रंथ, जिनमें सबसे महत्व के चीन के इतिहास विषय ग्रंथ तथा अरब यात्रियों एवं व्यापारियों के यात्रा विवरण है। अभिलेखों और चीनी एवं अरब ग्रंथों का उल्लेख हम यथास्थान करते रहते हैं और प्रसंगवश इस अध्याय में भी उन्हें उल्लेखित करेंगे, पर जावा के प्राचीन साहित्य पर पृथक रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विशिष्ट रूप को जानने का वही मुख्य साधन है। जावा के समान सुमात्रा, मलाया, बोर्नियो आदि के भारतीय राज्यों में भी अवश्य ही साहित्य का विकास हुआ होगा, पर वह अब उपलब्ध नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों में भारतीयों ने जब अपने उपनिवेश स्थापित किए तो वे भारत के साहित्य को भी अपने साथ ले गए और वहाँ उसका पठन पाठन होता रहा। इन प्रदेशों में संस्कृत का कितना अधिक प्रचार था, यह वहाँ उपलब्ध हुए संस्कृत अभिलेखों में स्पष्ट है। पर इन द्वीपों व प्रदेशों की अपनी स्थानीय भाषाएं भी थीं। यह संभव नहीं था कि इनके सब निवासी, जिनमें भारतीय उपनिवेशकों के अतिरिक्त वहाँ के पुराने निवासी भी थे, केवल संस्कृत का ही प्रयोग करने लगते। अतः यह स्वाभाविक था कि समयांतर में स्थानीय भाषाओं में भी साहित्य का सृजन होने लगा और लोग संस्कृत साहित्य के साथ साथ उसके अध्ययन अध्यापन में भी प्रवृत्त हो। जावा की भाषा में सबसे पहले अमरमाला नामक पुस्तक की रचना हुई थी। यह एक कोश ग्रंथ है जिसे संस्कृत के अमरकोश की शैली में लिखा गया है। अमरमाला की जब रचना हुई तभी जावी भाषा में रामायण भी लिखी गई। जावी की यह रामायण वाल्मीकि कृत संस्कृत रामायण का अनुवाद नहीं है और कितनी ही बातों में उससे भिन्न भी है। इसकी कथा के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद राम ने सीता को ग्रहण कर लिया था और सीता सीता के अंतिम वर्ष वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत नहीं हुए थे। जावी भाषा में साहित्य का विशेष रूप से निर्माण उस युग में हुआ जबकि धर्मवंश और एलंग के नेतृत्व में पूर्वी जावा ने महत्व प्राप्त कर लिया था। धर्मवंश के शासनकाल 10वीं सदी का अंत तक 11वीं सदी का प्रारंभ में महाभारत का जावी भाषा में अनुवाद किया गया। आदि पर्व, विराट पर्व और भीष्म पर्व का अनुवाद धर्मवंश की संरक्षकता में हुआ था और अन्य पर्वों को भी बाद में अनुदित किया गया था। महाभारत की कथा को लेकर जावी भाषा में अनेक स्वतंत्र साहित्यिक रचनाएं भी की गईं। इनमें अर्जुन विवाह नामक काव्य एलंग 1019 से 1042 ईस्वी की संरक्षकता में मपू कण्व नामक कवि द्वारा लिखा गया था। एलंग के युद्धों से प्रभावित होकर ही शायद कवि कण्व ने अर्जुन विवाह की रचना की थी, क्योंकि इस काव्य में निर्वात कवच के विरुद्ध लड़ाई में अर्जुन द्वारा देवताओं का सहायता का वर्णन है। एलंग के समय में ही कृष्णायन और सुमन सांतक काव्यों की रचना हुई थी। कृष्णायन का रचयिता कवि त्रिगुण था और इस काव्य में कृष्ण द्वारा रुक्मणी के हरण और जरासंध से युद्ध का वर्णन है। सुमन सांतक काव्य का आधार रघुवंश के राजा दशरथ की माता और राजा अज की रानी इंदुमती की वह कथा है जिसमें एक सुमन फूल द्वारा उसकी मृत्यु का वर्णन है। कटरी का राजा जय भय 1135 से 1150 के समय में जावी साहित्य की बहुत अधिक उन्नति हुई। इस काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भारत युद्ध है जिसमें महाभारत के युद्ध का सजीव वर्णन है। यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है जिसकी रचना महाभारत के उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण और शल्य पर्वों के आधार पर की गई थी। भाषा और शैली की दृष्टि से इसे अत्यंत उत्कृष्ट माना जाता है। राजा जयभय के आदेश से कवि मयूसदह ने इसकी रचना प्रारंभ की थी, पर किसी बात पर राजा का कोपभाजन हो जाने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर सका। बाद में कवि मयूपुनुलह ने इसे पूरा किया। मयूपुनुलह द्वारा हरिवंश नाम से एक अन्य काव्य की भी रचना की गई, जिसमें कृष्ण द्वारा रुक्मणी के हरण तथा पांडवों और जरासंध के युद्ध का वर्णन है। कडिरी के अन्य राजाओं में कामेश्वर के शासनकाल में समर दहन नामक काव्य का निर्माण हुआ, जिसमें शिव द्वारा समर कामदेव के दहन का वर्णन है। इस काव्य का रचयिता धर्म नामक कवि था। समर दहन काव्य राजा कामेश्वर के समय में लिखा गया था, यह तो सुनिश्चित है, पर कामेश्वर प्रथम जयभय का पूर्ववर्ती राजा था और कामेश्वर द्वितीय जयभय के दो पीढ़ी बाद 12वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ था। इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है कि समर दहन की रचना कामेश्वर प्रथम के काल में हुई थी या कामेश्वर द्वितीय के समय में। कामेश्वर के काल में ही भीम काव्य नामक काव्य ग्रंथ की रचना हुई थी, जिसमें कि पृथ्वी के पुत्र भूमि या नरक द्वारा इंद्र के परास्त किए जाने और अंत में इंद्र के हाथों से उस भौम की मृत्यु का वर्णन है। जावा के इतिहास में 14वीं सदी का बहुत महत्व है। इस काल में मचपहित के राज का उत्कर्ष हुआ और उसके राजा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए। राजसनगर मचपहित का एक शक्तिशाली सम्राट था। 1350 से 89 ईस्वी उसी के समय में 1365 ईस्वी में नागर कृतागम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई, जिसके लेखक का नाम प्रपंच था। जावी साहित्य में इस ग्रंथ का विशिष्ट स्थान है। इससे पूर्व जो अनेक काव्य एवं ग्रंथ की जावी भाषा में लिखे गए थे, उनके कथानक रामायण, महाभारत और पुराण आदि भारतीय ग्रंथों से लिए गए थे, पर प्रपंच ने नागर कृतागम की रचना करते हुए मचपहित के प्रसिद्ध राजा राजसनगर के जीवन वृत्त को आधार बनाया था। इसीलिए जावा के राजाओं, राजदरबार, राजधानी तथा साम्राज्य के संबंध में इस ग्रंथ से उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। प्रपंच ने अपने समकालीन लेखकों में म्यू तनवुलर का भी उल्लेख किया है, जिसने अर्जुन सहस्त्रबाहु और सुसोत्तम नामक काव्यों की रचना की थी। जावी भाषा के कतिपय काव्य ऐसे भी हैं जिनका रचना काल निर्धारित नहीं किया जा सका है। ऐसे काव्यों में इंद्र विजय, पार्थ यज्ञ, हरि विजय, काल यवनांतक, राम विजय, रत्न विजय, पार्थ विजय और विघ्नोत्सव उल्लेखनीय है। इन सबके कथानक प्राचीन भारतीय साहित्य से ही लिए गए हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सांस्कृतिक परंपरा के मूल स्रोत थे। महाभारत और रामायण को आधार बनाकर जावा में बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे। 10वीं सदी के अंत में राजा धर्मवंश के शासनकाल में महाभारत के कुछ पर्वों का जावी भाषा में अनुवाद हुआ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। बाद में जहाँ शेष पर्वों का अनुवाद हुआ, वहाँ महाभारत की कथा पर आधारित नए ग्रंथों की भी रचना शुरू हुई। यह प्रक्रिया चिरकाल तक जारी रही और बाद के समय में इस प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें कौरवाश्रम विशेष महत्व का है, क्योंकि इसकी कथा में महाभारत की कथा से अनेक भिन्नताएं पाई गई हैं। सार समुच्चय नाम का इस प्रकार का एक अन्य ग्रंथ भी जावी भाषा में लिखा गया है। यद्यपि इसमें प्रधानतया महाभारत के अनुशासन पर्व से नीति विषयक श्लोकों का संकलन उनकी जावी अनुवाद के साथ किया गया है, पर साथ ही रामायण और पंचतंत्र से भी बहुत से उक्तियां ली गई हैं। नवरुचि नामक ग्रंथ में भीम के वीर कृत्यों का वर्णन मिलता है, जो कि महाभारत पर आधारित है। भारत के समान जावा में भी पौराणिक साहित्य विद्यमान है। जावी भाषा के पुराण ग्रंथों में ब्राह्मण पुराण सर्वप्रधान है। यह भारत के ब्राह्मण पुराण से अधिक भिन्न नहीं है। एक अन्य पुराण ग्रंथ अगस्त पर्व है, जिसमें पुराणों की शैली में सुस्ती के उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। नीति शास्त्र विषयक अनेक ग्रंथ भी जावी भाषा में मिलते हैं। ऐसा एक ग्रंथ नीति सार या नीति शास्त्र है, जिसे मजपहित राज के अंतिम वर्षों में लिखा गया था। जिस प्रकार के नीति विषयक श्लोक या कथन संस्कृत के चाणक्य, शतक, पंचतंत्र आदि ग्रंथों में पाए जाते हैं, वैसे ही जावी के इस नीति सार में भी विद्यमान है और संभवतः वे भारतीय ग्रंथों से ही लिए गए हैं। कामंद कनीतिशार नामक राजनीति का संस्कृत ग्रंथ बाली से उपलब्ध हुआ है, पर आचार्य कामंदक का एक नीति ग्रंथ जावी भाषा में भी है, जिसमें रामायण और महाभारत के उदाहरणों द्वारा राजा के कर्तव्यों तथा राजकीय नीति का प्रतिपादन किया गया है। एक अन्य नीति ग्रंथ इंद्रलोक है, जिसमें भगवान इंद्रलोक के राजनीति विषय के मंतव्य संकलित हैं, जिनका प्रतिपादन उसने अपने शिष्य कुमार यज्ञ के लिए किया था। इसी प्रकार का एक अन्य ग्रंथ नीति त्रय है, जिसमें शत्रु के प्रति नीति का निरूपण है। जावी भाषा के साहित्य में इतिहास विषयक अनेक ग्रंथ भी विद्यमान हैं। नागर कृतागम का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसी वर्ग का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ पर रतोन है, जिसकी रचना 17वीं सदी के प्रारंभ काल में हुई थी। इसमें राजा अंग्रोक राजस 13वीं सदी का प्रथम चरण से जावा का इतिहास शुरू किया गया है और उसके बाद का प्रायः 3 सदियों का इतिहास इसमें विद्यमान है। सिंहसारी और मजपहित राज्यों के काल का पूरा विवरण इसमें आ जाता है। उसनजाव नाम के एक अन्य ग्रंथ में बाली के साथ संबंध रखने वाले अनुश्रुति संकलित है। ऐतिहासिक इतिवृत्त के ग्रंथों का एक अन्य वर्ग भी जावी भाषा में है, जिसे पम चंग कहते हैं। इस वर्ग के ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में हैं और उनमें अनेक वदी, स्थानीय कथाएं, किंवदंतियां तथा अनुश्रुतियां संकलित हैं। इतिहास विषय ग्रंथों का एक वर्ग पंजी कहता है, जो पद्य में है और जिनमें पुरानी साहसिक कथाएं वर्णित है। पंचतंत्र और हितोपदेश में जैसी कहानियां हैं, वैसी ही जावी भाषा में भी पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्री कहते हैं। यद्यपि प्रधानतया ये पंचतंत्र तथा हितोपदेश पर आधारित है, पर कतिपय कहानियां सर्वथा नई भी हैं। इसी ढंग का कथा साहित्य बाली, सियाम और लाओस की स्थानीय भाषाओं में भी पाया जाता है। पंचतंत्र में कहानियों को विष्णु शर्मा के मुख से कहाया गया है, जिसे राजकुल के अपने शिष्य को कथाओं द्वारा नीति की शिक्षा देते हुए प्रदर्शित किया गया है। पर तंत्री कथाएं एक ऐसी रानी के मुख से कहलवाई गई हैं, जिनका प्रतिदिन एक नए स्त्री से विवाह किया करता था। तंत्री कहानियों को कहने वाली रानी ऐसी रानियों में अंतिम थी, क्योंकि उसकी कथाओं की परंपरा का अंत ही नहीं होता। जावा में धार्मिक साहित्य की भी कोई कमी नहीं है। भारत से गए उपनिवेशक वैदिक और पौराणिक साहित्य को भी अपने साथ वहां ले गए थे। उसका पठन पाठन वहां जारी रहा और उसके आधार पर जावी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की गई। साथ ही अनेक ग्रंथों का मूल संस्कृत से अनुवाद भी किया गया। उपनिषदों और दर्शनों की परंपरा के अनुसार भी वहाँ जावी ग्रंथों की रचना हुई। इन सब का यहाँ परिचय दे सकना असंभव नहीं है। भारत के समान जावा का प्राचीन साहित्य भी अत्यंत समृद्ध था। यद्यपि अब जावा से हिंदू और बौद्ध धर्मों का अंत हो चुका है, पर इन धर्मों के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ अब भी जावी साहित्य में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति की जो परंपरा जावा तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों में विकसित हुई थी, इस्लाम भी उसे पूर्णतया नष्ट नहीं कर सका। उसकी छाप अब भी वहाँ की संस्कृति, भाषा व कला पर देखी जा सकती है।